नमस्कार, आज हम एक ऐसी विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने 20वीं सदी की जो उथल पुथल थी उसे न सिर्फ जिया बल्कि उसे समझने के लिए बिल्कुल नए तरीके दिए। हन्ना आरेंट, एक ऐसा नाम जो राजनीतिक सोच में मौलिकता, साहस और हाँ, कभी कभी विवाद का भी प्रतीक है।
बिल्कुल, हन्ना आरेंट की खास बात मतलब यह है कि उन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल या कोई सिस्टम नहीं माना, उन्होंने इसे मानवीय होने का एक बहुत जरूरी हिस्सा समझा। एक ऐसी जगह जहां हम अपनी पहचान दिखाते हैं, दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया बनाते हैं और सही माने में आज़ादी महसूस करते हैं।
हाँ, और उनकी अपनी कहानी भी तो एक जर्मन यहूदी शरणार्थी से अमेरिका के एक जानी मानी बुद्धिजीवी बनने तक का सफर, इसने यकीनन उनके विचारों को एक अलग ही गहराई दी होगी।
बिल्कुल, एक असाधारण गहराई और एक तात्कालिकता जो आज भी महसूस होती है।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हन्ना आरेंट की कहानी, उनके जो क्रांतिकारी विचार थे और आज के समय में उनकी आवाज कितनी मायने रखती है, इसे समझें। चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। आरेंट का समय तो उफ, इतिहास के सबसे मुश्किल दौरों में से एक था।
हाँ बिल्कुल, उनका जन्म 1906 में जर्मनी में हुआ और उन्होंने अपनी आंखों के सामने वाइमार गणराज्य को ढहते देखा, फिर नाजीवाद का वो भयानक उदय, दूसरा विश्व युद्ध, हॉलोकॉस्ट और फिर शीत युद्ध का साया।
ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं थे, है ना, ये तो जैसे पूरी सभ्यता का संकट था।
निश्चित रूप से, उन्होंने देखा कि कैसे ये अधिनायकवादी ताकतें थीं, मतलब नाजी जर्मनी और स्टालिन का रूस, ये सिर्फ दुश्मनों को नहीं मिटाना चाहते थे, ये तो इंसानों के बीच जो फर्क होता है, जो विविधता होती है, जिसे वो मानवीय बहुलता कहती थी, उसी को खत्म कर देना चाहते थे।
और इसी माहौल में उन्होंने सोचना शुरू किया। उनके शुरुआती जीवन, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए। सुना है मार्टिन हाइडेगर जैसे बड़े दार्शनिकों का भी उन पर असर था।
हाँ, वे पढ़ने में बहुत तेज थीं। उन्होंने मारबर्ग यूनिवर्सिटी में महान दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर से फलसफा पढ़ा। उनके बीच एक कह सकते हैं गहरा बौद्धिक रिश्ता भी बना,
जो बाद में काफी मुश्किल हो गया, है ना, हाइडेगर के नाजी पार्टी से जुड़ने के बाद।
हाँ बिल्कुल, बहुत जटिल और विवादास्पद हो गया वो। बाद में उन्होंने कार्ल यास्पर्स के अंडर में डॉक्टरेट पूरी की। यास्पर्स उनके गुरु भी बने और दोस्त भी। हाइडेलबर्ग से उनका शोध था सेंट ऑगस्टीन में प्रेम की अवधारणा पर, लेकिन ये अकादमिक दुनिया जल्द ही पीछे छूटने वाली थी।
1933, हिटलर का सत्ता में आना, ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना।
बिल्कुल, एक तरह से कहिए कि इस घटना ने उन्हें फलसफे के शांत कमरे से खींचकर राजनीति के क्रूर मैदान में ला खड़ा किया। वो खुद कहती थीं कि इसी वक्त वो अमूर्त सोचने के बजाय दुनिया के मामलों पर सोचने को मजबूर हुईं।
उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।
हाँ, कुछ समय के लिए गेस्टापो में गिरफ्तार किया था ज़ियोनी संगठनों की मदद करने की वजह से। इसके बाद वो जर्मनी से भाग निकलीं, पहले पेरिस गईं, फिर 1941 में जब फ्रांस पर भी नाजियों का कब्जा हो गया तो वहां से बचकर अपने पति हेनरिक ब्लूचर के साथ अमेरिका पहुंची,
एक राज्यविहीन शरणार्थी के तौर पर।
हाँ बिल्कुल, स्टेटलेस।
14 साल बिना किसी देश की नागरिकता के, ये अनुभव, इसका तो उनकी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा।
बहुत गहरा। वो जो उनका विचार है ना, अधिकार रखने का अधिकार, द राइट टू हैव राइट्स, वो इसी अनुभव की देन है। अमेरिका में उन्हें 1950 में नागरिकता मिली, वो इसे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पल मानती थी।
और यहीं वो एक बड़ी पब्लिक इंटेलेक्चुअल बनी, पढ़ाया लिखा और 20वीं सदी की सबसे अहम राजनीतिक आवाजों में से एक बन गई।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो खुद को दार्शनिक नहीं कहती थी, वो कहती थी मैं राजनीतिक सिद्धांतकार हूँ, क्योंकि उनका लेना देना हमेशा असल दुनिया से था और उसमें हम इंसान कैसे साथ रहते हैं इससे था। नई चीज है टोटलिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद। इसका मकसद सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका मकसद है विचारधारा और डर के जरिए इंसान की निजी और सार्वजनिक जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, नष्ट कर देना, और इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है इंसानों को अनावश्यक बना देना, सुपरफ्लूअस, उनकी सोचने की पहल करने की ताकत को ही खत्म कर देना। ये इंसान होने पर ही हमला था।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर, इंसानों को अनावश्यक बना देना। फिर 1958 में आई द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय स्थिति, शायद ये उनका सबसे अहम सैद्धांतिक काम माना जाता है। इसमें वो वीटा एक्टिवा यानी सक्रिय जीवन की बात करती हैं।
हाँ, ये किताब इंसानी गतिविधियों की एक बहुत ही अनोखी पड़ताल है। आरेंट ने इसमें सक्रिय जीवन के 3 लेवल बताए। पहला, श्रम यानी लेबर, जो हमारी बायोलॉजिकल जरूरतें हैं, जीने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जैसे खाना पीना, शरीर चलाना। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा है कार्य, यानी वर्क। इससे हम एक टिकने वाली दुनिया बनाते हैं, चीजें गढ़ते हैं, इमारतें, कला, औजार। ये हमें नेचर से थोड़ा ऊपर उठाता है।
और तीसरा, जो सबसे जरूरी था उनके लिए?
तीसरा है क्रिया, यानी एक्शन। ये वो खास इंसानी काबिलियत है जिससे हम पब्लिक में दूसरों के साथ मिलकर अपनी बात रखते हैं, काम करते हैं और कुछ नया शुरू करते हैं।
क्रिया के जरिए ही हम अपनी पहचान जाहिर करते हैं।
बिल्कुल, और दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। एरेंट के लिए सच्ची राजनीति इसी क्रिया में है, और वो हमें सावधान भी करती हैं कि जब हम श्रम यानी जरूरतों और कार्य यानी बनाने पर इतना जोर देते हैं कि क्रिया, राजनीतिक बातचीत और पहल पीछे छूट जाती है, तो हम अपनी सबसे कीमती इंसानी क्षमता खो देते हैं। मतलब आज़ादी और सार्वजनिक जीवन की संभावना ही खतरे में पड़ जाती है।
ये आज के लिए कितनी सही बात लगती है, जहाँ काम और ज़रूरतें ही हावी रहती हैं अक्सर। लेकिन उनकी एक और किताब थी जिसने भयानक विवाद खड़ा किया, 1963 की आइखमन इन जेरूसलम, अ रिपोर्ट ऑन द बनैलिटी ऑफ ईविल, यरूशलम में आइखमन।
हाँ, ये किताब अडोल्फ आइखमन के मुकदमे पर थी। आइखमन एक बड़ा नाजी अफसर था जिसने लाखों यहूदियों को डेथ कैंप्स तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम देखा था। एरेंट ने मुकदमे को कवर किया और जो नतीजा निकाला उसने बहुत लोगों को चौंका दिया, बल्कि गुस्सा भी दिलाया।
उन्होंने क्या कहा था?
उन्होंने कहा कि आइखमन कोई शैतान या कोई दिमागी तौर पर बिगड़ा हुआ राक्षस नहीं था, वो एक बेहद सामान्य आदमी था, एक ब्यूरोक्रेट जो बस ऊपर से मिले आदेश मान रहा था, बिना ये सोचे कि उसके कामों का नतीजा क्या निकल रहा है।
और यहीं से वो बुराई की सामान्यता, बनैलिटी ऑफ ईविल का विचार आया कि भयानक बुराई करने के लिए कोई शैतान होना जरूरी नहीं है।
हाँ बिल्कुल, उनका तर्क था कि आइखमन की बुराई उसकी विचारहीनता में थी। थॉटलेसनेस, मतलब दूसरों की जगह खुद को रखकर ना सोच पाना, अपने कामों के नैतिक नतीजों पर ध्यान ना देना और बस सिस्टम के नियमों को आंख बंद करके मानते जाना।
उन्होंने एक जगह लिखा भी है, शायद इसी किताब में या कहीं और।
हाँ, वो कहती हैं, दुखद सच तो ये है कि ज्यादातर बुराई वो लोग करते हैं जो कभी मन में ये तय ही नहीं करते कि उन्हें अच्छा बनना है या बुरा। ये विचार बहुत कंट्रोवर्शियल था। कई लोगों को लगा कि वो आइखमन के गुनाहों को कमाक रही हैं या पीड़ितों के लिए उनमें संवेदना नहीं है,
जबकि उनका मकसद शायद ये दिखाना था कि कैसे आजकल के सिस्टम आम लोगों को भी भयानक गुनाहों में शामिल कर सकते हैं।
बिल्कुल, अगर वो सोचना बंद कर दें, ये दिखाना कि आधुनिक नौकरशाही कितनी खतरनाक हो सकती है।
ये वाकई एक जटिल और परेशान करने वाला विचार है। उसी साल उनकी एक और किताब आई थी, ऑन रेवोल्यूशन, क्रांति पर। उसमें अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति की तुलना थी।
हाँ, और यहाँ भी उनका नजरिया अलग था। उन्होंने अमेरिकी क्रांति की तारीफ की। क्यों? क्योंकि उसका मुख्य मकसद राजनीतिक आजादी के लिए एक नया ढांचा, एक नया पब्लिक स्पेस बनाना था।
और फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना?
हाँ, उसकी आलोचना की, क्योंकि वो सामाजिक सवाल, मतलब गरीबी, बराबरी, इन मसलों को हल करने के जुनून में फंस गई। आरेंट का मानना था कि जब क्रांति का मकसद राजनीतिक आजादी से हटकर सामाजिक बराबरी या आर्थिक मसलों को सुलझाना हो जाता है, तो वो अक्सर हिंसा और तानाशाही की तरफ चली जाती है, और राजनीति का जो असली मकसद है, पब्लिक लाइफ और एक्शन, वो खत्म हो जाता है।
ये भी एक विवादास्पद बात थी, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक आजादी का क्या मतलब।
हाँ, निश्चित रूप से, और यही आरेंट के काम की खासियत है। वो हमें जमी जमाई सोच पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। अगर उनके मुख्य बौद्धिक योगदान देखें तो कुछ चीजें साफ नजर आती हैं।
जैसे?
पहला, मानवीय बहुलता और क्रिया पर जोर। राजनीति तभी मुमकिन है जब अलग अलग अनोखे लोग एक साथ आएं और पब्लिक में बोलें और काम करें।
दूसरा, आपने बताया था जन्म की बात।
हाँ, जन्मजात्यता का विचार। हर जन्म एक नई शुरुआत है, दुनिया में कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड लाने की क्षमता। यही इंसानी आजादी और राजनीति की जड़ है।
और तीसरा, वो पब्लिक और प्राइवेट वाला फर्क।
हाँ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का साफ अंतर। उनका मानना था कि राजनीतिक आजादी के लिए ये जरूरी है कि घर, परिवार और जरूरतों का दायरा, जो निजी है, और सार्वजनिक बहस और एक्शन का दायरा, जो सार्वजनिक है, ये अलग रहें।
उन्होंने शक्ति यानी पावर को भी अलग तरह से देखा था, है ना, हिंसा से बिल्कुल अलग।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उनके लिए शक्ति सिर्फ काम करने की इंसानी काबिलियत से नहीं, बल्कि मिलकर काम करने की काबिलियत से जुड़ी है। मतलब पावर बंदूक की नोक से नहीं निकलती, वो तब पैदा होती है जब लोग आपस में बात करके, सहमति से, मिलकर कोई काम करते हैं। ये जबरदस्ती से नहीं आती।
अच्छा, और उनके समय के दूसरे विचारकों से उनकी तुलना करें तो, जैसे हाइडेगर या मार्क्स से, वो कहाँ अलग थीं?
देखिए, अपने गुरु हाइडेगर से वो इंसानी अनुभवों, जैसे जन्म मृत्यु में दिलचस्पी तो लेती थीं, लेकिन हाइडेगर का राजनीति से दूर रहना और फिर नाजी पार्टी से जुड़ना, इससे उन्होंने कभी माना नहीं। और मार्क्स की तो उन्होंने काफी आलोचना की।
क्यों?
क्योंकि मार्क्स ने इतिहास को श्रम और आर्थिक रिश्तों से समझा था। आरेंट को लगा कि इससे क्रिया यानी राजनीति का जो खास इंसानी महत्व है वो कम हो जाता है। वो लियो स्ट्रॉस जैसे कंजर्वेटिव विचारकों से भी अलग थीं, जो पुराने ग्रंथों में सच खोजते थे, और यशाया बर्लिन जैसे लिबरल लोगों से भी, जिनका जोर व्यक्ति की नेगेटिव फ्रीडम पर ज्यादा था। आरेंट का फोकस हमेशा पब्लिक लाइफ, सिटीजनशिप और एक साझा दुनिया बनाने पर रहा।
ये तो साफ है कि वो एक बिल्कुल अलग अपनी राह बनाने वाली विचारक थीं। उनकी मृत्यु के बाद तो उनका असर और बढ़ा ही है। आज के समय में उनकी क्या रेलेवेंस है?
उनकी रेलेवेंस तो आज कई लेवल पर है। आज जब हम देखते हैं कि पब्लिक डिबेट का स्तर गिर रहा है, सोशल मीडिया पर अपने ही जैसे लोगों के बीच घिरे रहते हैं लोग, राजनीति से उदासीन हो रहे हैं, तो आरेंट की पब्लिक स्पेस के महत्व पर जो जोर देने वाली बात है वो और भी जरूरी लगती है।
और अधिनायकवाद की उनकी चेतावनी,
हाँ, कि कैसे ये धीरे धीरे सोच को खत्म करके फैलता है, ये आज भी उतनी ही सच है।
और शरणार्थियों का मुद्दा, वो तो आज इतना बड़ा संकट है दुनिया में।
बिल्कुल, स्टेटलेसनेस पर उनका जो लिखा हुआ है और वो अधिकार रखने का अधिकार वाली बात, वो आज रेफ्यूजी राइट्स की डिबेट के सेंटर में है। वो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बुनियादी हक किसी खास कानून के तहत मिलने वाले हक नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा होने का हक है, अपनी बात कहने और सुने जाने का हक।
तो संक्षेप में, वो हमें एक एक्टिव नागरिक बनने, क्रिटिकली सोचने और अपनी साझा दुनिया की जिम्मेदारी लेने को कहती हैं।
बिल्कुल, यही उनका निचोड़ है।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प पहलू भी हैं। हाइडेगर वाला किस्सा तो है ही।
हाँ, हाइडेगर के साथ उनके रिश्ते की जो पेचीदगी है, जवानी का प्यार, फिर नाजीवाद पर मतभेद और बाद में एक तरह की इंटेलेक्चुअल सुलह, इस पर हमेशा बहस होती रहती है। कुछ लोग इसे नैतिक समझौता मानते हैं, कुछ इसे इंसानी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी का उदाहरण।
और
इसके अलावा उनकी वो सिगरेट पीते हुए सोचने वाली तस्वीरें बहुत मशहूर हैं, जैसे वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा ही बन गई। और ये भी दिलचस्प है कि इतनी गंभीर राजनीतिक विचारक होते हुए भी उन्हें कविता से बहुत लगाव था। वो मानती थीं कि कविता सच को सामने लाने का सबसे ताकतवर जरिया है।
लेकिन उनके काम की आलोचनाएं भी हुई हैं, जिनका जिक्र करना जरूरी है। आइखमन वाली किताब का विवाद तो हमने सुना ही।
हाँ, वो सबसे बड़ा था। इसके अलावा कुछ आलोचक कहते हैं कि उन्होंने प्राचीन यूनानी पुलिस यानी शहर राज्य को कुछ ज्यादा ही आइडियलाइज कर दिया। वहां जो गुलामी थी या महिलाओं को बाहर रखा जाता था, उन मुद्दों को कम आकाब।
और पब्लिक प्राइवेट वाले विवाद की भी आलोचना होती है।
हाँ, उस पर भी सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि इससे गरीबी, आर्थिक न्याय जैसे जरूरी मुद्दे राजनीति के दायरे से बाहर हो जाते हैं, और ये मुश्किल हो सकता है, खासकर महिलाओं और हाशिए के तबकों के लिए।
तो इन तमाम विचारों, योगदानों और विवादों के बाद हन्ना आरेंट आखिर किस सोच के साथ छोड़ जाती हैं?
मेरे ख्याल में वो हमें सबसे बड़ी चुनौती देती हैं, सोचने की चुनौती। और उनका मतलब सिर्फ दिमागी कसरत से नहीं था, उनके लिए सोचना एक नैतिक, एक पॉलिटिकल काम था। दूसरों के नज़रिए से देखना, जो चल रहा है उस पर सवाल उठाना, अपने कामों की जिम्मेदारी लेना, यही था उनके लिए असली सोचना।
उन्होंने कहा भी था शायद कि मुश्किल हालात में सोचना ज्यादा कठिन होता है।
हाँ बिल्कुल, अत्याचार की परिस्थितियों में सोचना काम करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है।
ये आज के पोस्ट ट्रूथ या इतनी तेज जानकारी वाले युग में शायद और भी ज्यादा सच लगता है, जहां बिना सोचे समझे कुछ भी मान लेना या कह देना कितना आसान है।
हाँ बिल्कुल, तो आरेंट का आखिरी संदेश शायद यही है, एक ऐसी दुनिया में जहां विचारहीनता महामारी की तरफ फैल सकती है और जहां तानाशाही की आहटें हमेशा सुनाई देती रहती हैं, वहां लोकतंत्र, आज़ादी और इंसानी गरिमा को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है आज़ादी से, हिम्मत से और जिम्मेदारी से सोचना और पब्लिक लाइफ में एक्टिव रहना। ये सवाल हम सबके लिए है कि इस चुनौती का सामना हम कैसे करते हैं।
वाकई एक गहरा और ज़रूरी सवाल। हन्ना आरेंट की दुनिया की ये यात्रा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। समापन नरेशन प्री रिकॉर्डेड। फिर मिलेंगे अगले अंक में, एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।